बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत में हैं और उन्होंने यहां पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की है। बातचीत में दोनों देशों के नेताओं ने पारस्परिक सहयोग व भागीदारी बढ़ाने की तो बात की ही, क्षेत्र में चरमपंथ की समस्या से निपटने के लिए पाकिस्तान पर और दबाव बनाने की भी वकालत की। न सिर्फ आपसी बातचीत बल्कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे संस्थान में भी जॉन कैरी ने पाकिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने कहा,
क्लियर दैट पाकिस्तान हैज वर्क टू डू इन ऑर्डर टू पुश हार्डर।
ये बात सही है कि पाकिस्तान को उन स्वदेशी गुटों के खिलाफ काम करने की जरूरत है जो चरमपंथ और आतंकी कार्रवाइयों में शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान खुद भी आतंक का शिकार रहा है और आतंकी घटनाओं में 50,000 लोग मारे जा चुके हैं।
उधर पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के इन बयानों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब वो वहां होंगे तो कुछ और बयान देंगे और जब यहां होंगे तो उनका बयान कुछ और होगा। बीबीसी उर्दू संवाददाता उमर आफरीदी ने बात की सरताज अजीज से और पूछा कि अमरीका चरमपंथ के खिलाफ पाकिस्तान के अभियान की तारीफ भी करता है, साथ ही साथ बार बार ये भी दोहराता है कि पाकिस्तान को और काम किए जाने की जरूरत है।
दो तीन साल से जब से ये अफगानिस्तान से अमेरिका की फोर्सेस कम हो रही हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है बड़ा वो अब अफगानिस्तान की जगह मिडिल ईस्ट हो गया है, तो अमेरिका ने अपनी एशिया पिवट की पॉलिसी शुरू की है और जाहिर है कि इंडिया उससे ज्यादा फिट होता है क्योंकि उसका बुनियादी मकसद है चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसे काउंटर करना, तो इंडिया उसके लिए रेलेवेंट हो जाता है और ये कोऑपरेशन उनकी जो है वो बढ़ रही है। तो वो जो टेररिज्म की बात है जब इंडिया में होंगे तो यही बात करेंगे कि जी टेररिज्म में और कोऑपरेशन होनी। तीन साल में पाकिस्तान ने टेररिज्म में जो कामयाबी हासिल की है, इंडिया का ख्वाहिश यह है कि ये हमें क्रेडिट ना मिले इसका।
सरताजी साहब, पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हरावल दस्ता रहा है अमरीका के साथ, क्या ये सफारती तकाजा नहीं है कि जॉन कैरी जो वजीर खारजा हैं अमेरिका के वो इस तरह के बयानात भारत में जाकर ना दें जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो?
खैर बदनामी भी नहीं होती, वो तो तवक्को है, दुनिया तमाम दहशतगर्दी की बातें करती है तो सब कहते हैं एवरीबॉडी शुड कोऑपरेट, जब यहाँ आएंगे तो कोई ऐसी बात करेंगे जो हमें सूट करेगी, जब हिंदुस्तान जाएंगे तो ऐसी बात करेंगे जो हमें सूट करेगी।
उन्होंने नाम लेकर लश्कर तैयबा और हकानी नेटवर्क का कहा है कि इनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं हुई जो दूसरी तंजीमों के खिलाफ हुई है, क्या पाकिस्तान वाकई ऐसा कर रहा है कि वो चूज कर रहा है कि किसके खिलाफ कार्रवाई कितनी करनी है?
लेकिन हमारा ऑपरेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हकानी नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, बाकियों के खिलाफ भी यूएन सैंक्शंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं जमातुल दावा के खिलाफ और ग्रेजुअली कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि हम इनका बड़े ऊपर चल के ऐलान करें, लेकिन ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अमरीका को खुश करना है, हिंदुस्तान को खुश करना है, हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपने मुल्क में अमन चाहिए।
सरताजी साहब, लश्कर तैयबा है या जैश मोहम्मद है, इनके रहनुमा पाकिस्तान में हैं और वो खुले फिर रहे हैं, हाफिज सईद हैं, जकी उर रहमान लखवी हैं?
नहीं, उन पर बहुत पाबंदी है जी, ऐसी लोग बातें करते हैं, उनके अकाउंट, उनकी फंड रेजिंग जितने भी हैं वो चली हुई हैं, लेकिन जाहिर है कि उसमें जब कश्मीर का मसला आता है उनको मौका मिलता है तो जाहिर है उन्होंने बात करनी हुई, इंडिया के ये की स्ट्रेटजी है।
लेकिन जैसे पाकिस्तान की बारहा कोशिश रही है कि इंडिया से, भारत से किसी तरह बातचीत दोबारा शुरू हो, तो आप नहीं समझते कि जॉन कैरी को यहाँ पर भारत पे जोर देना चाहिए था कि वो पाकिस्तान से बातचीत करे, ना कि वही बयान दोहराए जो इंडिया दोहराता रहा है?
इस बात पे हमें मायूस हुई है और मैंने P5 के जो नुमाइंदे थे इंक्लूडिंग अमेरिका उनको पिछले हफ्ते ये बात खुल के कही थी कि हम बड़े मायूस हुए हैं कि जिस तरीके से कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं उससे बड़े छोटे छोटे वाक्यात पे जिस तरीके से ये लोग आवाज उठाती हैं, सब लोगों ने उस पर कंसर्न शो किया, किसी ने कंडेम नहीं किया, 80 लोग मर गए, 6,000 जख्मी हुए हैं, 200 नौजवान अंधे हुए हैं, जिस तरीके से एक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को पीसफुल तरीके से किया जा रहा है, कोई उसमें क्रॉस बॉर्डर नहीं है, बिल्कुल इंडिजिनस मूवमेंट है और इसीलिए इंडिया जो है वो कोई रास्ता ढूंढ रहा है कि उसको लगे कि ये कश्मीर की मूवमेंट नहीं है, क्रॉस बॉर्डर है। वो 2 लाख आदमी जो मुजफ्फर वानी के जनाजे में आए थे वो सब बाहर से आए हुए थे, दे आर ऑल लोकल, तो ये वाकई एक ऐसी चीज है जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं।
लेकिन आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तन्हा रह गया है आलमी बरादरी में कश्मीर के मसले पर भी और शिद्दत पसंदी के मसले पर भी, अगर इस तरह के बयान हलीफों की तरफ से आएंगे?
नहीं, कश्मीर का मसला दुनिया ने नहीं यार करना, कश्मीरों ने खुद हल करना, जो लोग एक दफा खून देने को तैयार हो जाए हक के लिए उसको कोई नहीं दबा सकता, वो तो उधर से होगा और बाकी हमारे ताल्लुकात चाइना से, रशिया से, मिडिल ईस्टर्न कंट्री से, वो अब रीअलाइनमेंट में, अब हिंदुस्तान के ताल्लुकात कौन से अपने नेबर से, اچھے ہیں, سب کے ساتھ ان کی کشیدگی ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا سمپلسٹک نہیں ہے کہ ہم تنہا رہ گئے ہیں, یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے جو کہ ہو رہا ہے ہمارے اس وقت. جو ری الائنمنٹ دنیا میں ہو رہے ہیں, وی آر پروبلی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری.
پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف کے ودیش معاملوں کے صلاحکار سرتاج عزیز سے بات کر رہے تھے بی بی سی اردو سنواداتا عمر آفریدی.
نمسکار بھارت, شارٹ ویو 31, 25 اور 19 میٹر بینڈ یعنی 9835, 9915, 11995 اور 15510 کلو ہرٹز, اور میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز پر.
آپ سن رہے ہیں بی بی سی ہندی سیوا کی پہلی سبھا نمسکار بھارت. بھارت کی خبروں کا ذکر تھوڑا رک کر کریں گے, پہلے بڑی انتراشٹری خبر. برازیل کی پہلی مہیلا راشٹرپتی زلما روسیف کو مہابھیوگ کے پکش میں بہمت سے ووٹ پڑنے کے بعد پد سے ہٹا دیا گیا ہے. ان کی جگہ کارکاری راشٹرپتی رہے مشیل ٹیمر کو راشٹرپتی بنایا گیا ہے. روسیف نے پد سے ہٹائے جانے کے بعد کہا کہ یہ ایک نردوش مہیلا کے ساتھ انیائے ہے. بھرشٹاچار اور بجٹ میں وتیہ گڑبڑی کے آروپ کے ساتھ زلما روسیف اور ان کی ورکرز پارٹی کی مشکلیں 2014 سے ہی بڑھنے لگی تھیں جب وہ دوسری بار راشٹرپتی بنی تھی. بی بی سی سمواداتاؤں کا بھیجا بیورا سنیے ہریتا کانڈپال سے.
Tomem os seus lugares, por favor. Proclamo o resultado.
یہ تھے برازیل کے سپریم کورٹ کے جج ریکارڈو لیوانڈوفسکی, جو بتا رہے تھے کہ برازیل کی سینٹ میں راشٹرپتی زلما روسیف کے خلاف چلائے جا رہے مہابھیوگ کے پکش میں 81 سینیٹروں نے متدان کیا, جس میں سے 61 سینیٹروں نے اس کے پکش میں ووٹ ڈالے اور وپکش میں صرف 20 سینیٹروں نے. اسی کے ساتھ برازیل کی پہلی مہیلا راشٹرپتی زلما روسیف کو پد سے ہٹا دیا گیا اور ان کی وامپنتھی ورکرز پارٹی کے ہاتھ سے 13 سال پرانی ستا پھسل چکی ہے. ان پر دیش کے وتیہ گھاٹے کو کم کر دکھانے کا آروپ تھا. اپنے پد سے ہٹائے جانے کے بعد زلما روسیف نے پہلی پرتکریا میں کہا کہ یہ ایک نردوش مہیلا کے ساتھ کیا گیا بڑا انیائے ہے. زلما روسیف کہہ رہی تھی, کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. ستا پلٹ کر کے لوکتانترک پرکریا میں دخل کا یہ انت نہیں ہے. ہم لوٹیں گے, اپنی اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے ہم لوٹیں گے. برازیل کے لوگوں کو سوائتتا دینے کے لیے ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے. زلما روسیف کی شبد. روسیف کو کسی سرکاری پد سے 8 سال کے لیے ونچت رکھنے کا پرستاو سینٹ میں پاس نہیں ہو سکا کیونکہ اس کے لیے 2/3 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں ہٹانے کے ترنت بعد انترم راشٹرپتی مشیل ٹیمر کو راشٹرپتی پد کی شپت دلا دی
گئی.
1947 میں بیلو ہوریزونٹ میں پیدا ہوئی زلما روسیف کے پتا بلغیریائی اپرواسی تھے. 1964 میں زلما روسیف برازیل کی سینے تانہ شاہی کے خلاف وام دلوں کے آندولن سے جڑی اور اس دوران 3 سال کے لیے جیل بھی گئیں. 2011 میں وہ برازیل کی پہلی مہیلا راشٹرپتی بنی اور 2014 میں بہت کم انتر سے دوبارہ راشٹرپتی کا چناؤ جیتی. تب تک برازیل کی ارتھ ویوستھا لڑکھڑانے لگی تھی اور جن نیتوں کا ورودھ کر وہ ستا میں دوبارہ لوٹی تھی انہیں کو لاگو کرنے پر ان کے خلاف وپکش میں ہی نہیں بلکہ سڑکوں پر بھی غصہ امڑ پڑا تھا. اسی دوران ان کے خلاف مہابھیوگ کے بیج بوئے جا چکے تھے. ان کے سہیوگی دل پی ایم بی ڈی نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا. روسیف اور ان کے سہیوگی ان پر لگے وتیہ گڑبڑیوں کے آروپ سے انکار کرتے رہے. یہ پہلی بار نہیں ہے جب برازیل میں مہابھیوگ چلا کر کسی راشٹرپتی کو پد سے ہٹایا گیا ہے. 1992 میں فرنانڈو کولور ڈی میلو کو بھرشٹاچار کا ایک گھوٹالہ سامنے آنے کے بعد ان کے پد سے ہٹا دیا گیا تھا. زلما روسیف کا کارکال 2019 میں ختم ہونے والا تھا جسے اب مشیل ٹیمر پورا کریں گے, لیکن بھرشٹاچار اور چرمراتی ارتھ ویوستھا سے اوب چکے لوگوں کے اسنتوش کو دیکھتے ہوئے جلد ہی چناؤ کی نوبت آ سکتی ہے.
تو جیسا کہ آپ نے سنا, برازیل کی پہلی مہیلا راشٹرپتی زلما روسیف کو مہابھیوگ کے پکش میں بہمت سے ووٹ پڑنے کے بعد پد سے ہٹا دیا گیا ہے. اس انتراشٹری خبر کے بعد رخ بھارت کی راجدھانی دلی کا کرتے ہیں. عام آدمی پارٹی کے ایک اور منتری کو پد سے ہٹا دیا گیا ہے. سماج کلیان اور مہیلا بال وکاس منتری سندیپ کمار کو مکھیہ منتری اروند کیجریوال نے کل دیر شام برخاست کر دیا. سندیپ کمار کا ایک کتھت ویڈیو سامنے آنے کی بات کہی جا رہی ہے. عام آدمی پارٹی کے وہ تیسرے منتری ہیں جنہیں ویوادوں میں گھرنے کے بعد پد سے ہٹایا گیا ہے. کیا ہے یہ سی ڈی ٹیپ کا معاملہ؟ پورا بیورا سنیے نکھل رنجن سے.
بدھوار دیر شام اچانک دلی کے مکھیہ منتری اروند کیجریوال نے کیبنٹ منتری سندیپ کمار کو منتری منڈل سے ہٹانے کا اعلان کر دیا. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि एक सीडी उन तक पहुंची है। अपुष्ट खबरों में कहा जा रहा है कि इस सीडी में एक वीडियो है जिसमें कथित रूप से संदीप कुमार दो महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं। इसके कुछ ही देर बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रेस के सामने आए और कहा कि सीडी मिलने के आधे घंटे के भीतर संदीप कुमार को हटाने का फैसला ले लिया गया।
आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली में मंत्री संदीप कुमार के बारे में एक आपत्तिजनक सीडी मुख्यमंत्री जी को मिली और आधा घंटे के अंदर मंत्री जी को हटाने का निर्णय ले लिया गया, उनको हटा दिया गया। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी उसूलों की पार्टी है। भ्रष्टाचार को लेके, करप्शन को लेके, किसी तरह के क्राइम को लेके, किसी तरह के कैरेक्टर को लेके कोई भी दाग आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको ध्यान होगा, पहले एक मंत्री को रिश्वत लेने की बात सामने आई थी, उनको तुरंत हटा दिया गया बिना देरी किए हुए। अभी हमारे पंजाब के कन्वीनर के पैसे लेने की बात सामने आई, उनको तुरंत हटा दिया गया। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे आम आदमी पार्टी काम करती है और यही डिफरेंस है आम आदमी पार्टी में और बाकी पार्टियों में।
संदीप कुमार दिल्ली सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। संदीप कुमार ने ही पिछले महीने दिल्ली से भिखारियों को हटाने की योजना बनाई थी। बाद में जब इस योजना की आलोचना हुई तो मुख्यमंत्री केजरीवाल के दखल के बाद इसे वापस लिया गया। दिल्ली में प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने इस मामले के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी की आलोचना की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा,
देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी में रोज कुछ ना कुछ नाटक होते रहते हैं। देश की राजनीति में सुचिता और पारदर्शिता का दम्भ भरने वाली आम आदमी पार्टी अपने आंतरिक अंतर्विरोध, भ्रष्टाचार और अवमूल्यन से परेशान है। वो रोज प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते रहते हैं। मुझे तो दिल्ली के लोगों से एक विनम्रता से सवाल पूछना है। दिल्ली के लोग विचार करें कि उनके दावों पर विश्वास करके उन्होंने उनको ऐतिहासिक बहुमत दिया था 70-67 और परफॉर्मेंस क्या है तो सबके सामने।
संदीप कुमार दिल्ली की मौजूदा सरकार के तीसरे ऐसे मंत्री हैं जिन्हें पार्टी ने पद से हटाया है। इसके पहले मुख्यमंत्री ने पिछले साल अक्टूबर में आसिम अहमद खान को घूस मांगने के आरोप में हटाया था। उससे पहले जून 2015 में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री की बात सामने आने पर उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या अपराध को पार्टी में बर्दाश्त नहीं करेगी।
तो आम आदमी पार्टी के एक और मंत्री को पद से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा के लिए अधिग्रहित की गई जमीन को अवैध ठहराते हुए इसे रद्द कर दिया है और जमीन उनके मालिक किसानों को 12 हफ्ते के भीतर वापस करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, किसानों को जो मुआवजा मिला था वो भी उन्हें वापस नहीं करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील सूरज सिंह से हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने पूछा कि टाटा को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है, टाटा से गलती कहाँ हुई?
जब जमीन एक्वायर की गई तो ये कहा गया कि इट इज फॉर पब्लिक पर्पस, और पब्लिक पर्पस के लिए कई फॉर्मेलिटी जो हैं वो नहीं करनी होती हैं जो अगर प्राइवेट कंपनी के लिए जमीन ली जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर प्राइवेट कंपनी के लिए जमीन ली जाती है तो जिनकी जमीन है उनसे पूछा जाता है और साथ ही उनको मार्केट रेट से कंपनसेशन मिलता है। लेकिन अगर सरकार उसको लेती है पब्लिक पर्पस से तो इन सब फॉर्मेलिटीज को वो चाहे तो डिस्पेंस कर सकती है, छोड़ सकती है। इस केस में ये हुआ कि सरकार ने पब्लिक पर्पस के नाम से जमीन ली और टाटा को दे दी, तो कोर्ट ने ये देखा कि जमीन को आइडेंटिफाई भी टाटा मोटर्स ने किया था, जमीन के लिए आग्रह भी सारा टाटा मोटर्स ने किया था। तो जब सारी चीज कंपनी के लिए थी तो कंपनी के लिए जो फॉर्मेलिटीज होती है, जो कंप्लायंस होती है, उसको ना पूरा करके अचानक कैसे ये पब्लिक पर्पस होके सरकार के लिए होगी। इसी तरह का ठीक केस 2014 में जो रिलायंस पावर प्रोजेक्ट है उसमें भी मुलायम सिंह गवर्नमेंट पे दबाव डाल के रिलायंस ने ही सारी जमीन ढूंढी थी नोएडा दादरी के पास और रिलायंस ने ही सारी कार्रवाई की थी। तो जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज ने कहा कि ये पावर का दुरुपयोग है और इसको निरस्त किया जाता है। ठीक इसी तरह से यहां किया गया। दूसरा यहां पॉइंट ये है कि ज्यादातर जब जमीन वापस कर दी जाती है तो जो मुआवजा कॉम्पनसेशन जो दिया जाता है वो वापस किया जाता है। इस केस में ने कहा कि क्योंकि 10 साल से 2006 से ये जो लोग थे जिनकी जमीन थी, गरीब थे, उनकी लाइवलीहुड से वंचित किया गया, उनको हरेस किया गया, तो उसके हरेसमेंट का कंपनसेशन के रूप में ये जो मुआवजा दिया गया था ये वापस नहीं दिया जाएगा बल्कि किसानों के पास ही रहेगा। यहाँ तक कि जिन्होंने कंपनसेशन नहीं उठाया है उसके लिए भी कोर्ट ने कहा है कि वो भी जाके लैंड कलेक्टर से अपना कंपनसेशन ले सकते हैं और अपनी जमीन भी रख सकते हैं।
टाटा ने सरकार की मिलीभगत से जमीन हासिल की और टाटा को अब ये जमीन भी उनके हाथ से जाएगी और जो पैसा दिया था वो भी उनके हाथ से जाएगा, लेकिन सरकार की जो भूमिका रही या जिन मंत्रियों की इसमें भूमिका रही या जिन नीतियों की इसमें भूमिका रही उनका क्या?
क्योंकि टाटा की तरफ से ये आर्गुमेंट किया गया कि सरकार बदलने पर क्या सरकार का स्टैंड बदल सकता है, क्योंकि पहले की सरकार जो उन्होंने सपोर्ट किया था कि ये एक्विजिशन ठीक है, ममता बनर्जी की सरकार ने कहा नहीं नहीं बहुत इसमें गलतियां हुई। तो टाटा की तरफ से ये आर्ग्यू किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई क्या सरकार बदलने से सरकार की जो अप्रोच है या सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब देना है वो बदल सकता है। तो उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर एक सरकार कोई निर्णय लेती है, दूसरी सरकार को लगता है कि कानून का पालन नहीं हुआ, तो दूसरी सरकार जो है अपना अलग से स्टैंड रख सकती है। इसके इसमें भी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने किसानों का साथ दिया और कहा कि सरकार का जो खुद का फैसला था वो गलत था। सारा रिकॉर्ड बताता है कि टाटा ने दबाव में डाल के ये जमीन जो है एक्वायर कराई थी सरकार से।
सुप्रीम कोर्ट के वकील सूरत सिंह बता रहे थे कि मामला क्या था और किस तरह से पेचीदगियां इसमें आई। कार्यक्रम में अब अखबारों का जिक्र कर लेते हैं। हरिता, क्या कह रहे हैं अखबार?
जी, अभी जिस पर हम बात कर रहे थे सिंगूर, जाहिर है वो कल की सबसे बड़ी खबर थी और वही सारे अखबारों की प्रमुख सुर्खी बनी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा कि जिस तरह ज़मीन ली गई वो ठीक नहीं था और 12 हफ्तों में ज़मीन लौटाने को कहा गया है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अब वो चैन से मर सकती हैं क्योंकि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। और द पायनियर अखबार ने लिखा है कि सिंगूर के किसान बहुत खुश हैं और उनकी प्रतिक्रिया ये है कि उन्हें लग रहा है कि जैसे अभी से दुर्गा पूजा जैसा माहौल बन गया है। द हिंदू ने एक और अदालत की टिप्पणी का जिक्र किया है जो अदालत ने कहा था कि विकास का जो बोझ है वो गरीबों के कंधों पर ही नहीं होना चाहिए कि उनसे जमीन ले ली जाए और उन्हें तरसाया जाए। एक और खबर जो सारे अखबारों की सुर्खियां हैं वो है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की जमीन के सौदे की जांच रिपोर्ट की। द पायनियर ने लिखा है कि जस्टिस ढींगरा ने कहा कि अगर गड़बड़ी नहीं होती तो वो 182 पन्नों की रिपोर्ट क्यों बनाती। जी, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं, उन्होंने कल रिपोर्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दी है और रॉबर्ट वाड्रा की जमीन सौदे में कई गड़बड़ियां पाई जाने की खबर उन्होंने दी है।
हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि जस्टिस ढींगरा ने थोड़ा समय और मांगा था कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, और कहा था कि कुछ उनके हाथ तथ्य लगे हैं जिस पर वो आगे विचार करना चाहते हैं, और उसके बाद अब उन्होंने रिपोर्ट दी।
जी, इसके अलावा एक और खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है कि RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोवा में इनके जो मुखिया थे उनको हटा दिया गया है और उसके बाद शायद पहली बार ऐसा हो रहा है। हाल फिलहाल में हमने कभी नहीं देखा RSS के सारे जो गोवा यूनिट के पदाधिकारी थे उन्होंने एक साथ इस्तीफा दे दिया है और इस तरह की RSS में बड़ा अनुशासन है और ये खबर अपने आप में एक चौंकाने वाली खबर है। और अब बात करते हैं दिल्ली में कल भारी बारिश हुई और
ट्रैफिक जाम रहा।
इससे जनसत्ता ने लिखा है कि अमरीकी विदेश मंत्री से लेकर आम आदमी तक सभी हलकान। जॉन कैरी ने तो चुटकी ली और कहा कि IIT दिल्ली के छात्र क्या नाव से यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने ये चुटकी ली।
अपने श्रोताओं को ये बता दें कि कार्यक्रम करने के बाद जब हम अपने घर पहुंच रहे थे तो हमें भी पहुंचने में 2-2.5 घंटे लग गए।
और आखिर में एक खबर दैनिक भास्कर ने बड़ी दिलचस्प खबर छापी कि बिहार में बाढ़ में गंगा की गोद में किलकारियां गूंज रही हैं और जो बच्चे नावों पर जन्म ले रहे हैं NDRF से लोग काफ़ी खुश हैं, उन्होंने जो मदद की है इसमें, और लोग अपने बच्चों का नाम NDRF सिंह और नमामि गंगे तक रख रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया हरिता। और जिस चीज़ का आप, जिस खबर का आप जिक्र कर रही हैं, अगली जो हमारी खबर है वो उसी से जुड़ी हुई है कि जो बिहार की बाढ़ आई वो अपने साथ नई कहानियां लेकर आई। बाढ़ के चलते गर्भवती महिलाओं को घर छोड़ना पड़ा, जिनका 9वां महीना चल रहा था, ऐसी कई महिलाओं के बच्चों ने जन्म नाव पर लिया, कुछ ने राहत शिविर में जन्म लिया। सुनिए ये विशेष रिपोर्ट रवि प्रकाश से।
बधाई हो, रेणु को बेटा हुआ है, नाम रखा गया है राजा। राजा के आने की खुशी में रेणु भूल गई है कि उनका घर बाढ़ के पानी में डूबा है। भागलपुर जिले के गोराडी प्रखंड का एक गांव है जलसी, यहीं की रहने वाली हैं रेणु और उनके पति सुनील। उनके गांव में 15 दिनों से बाढ़ का पानी जमा है। आधी रात को जब बाढ़ का पानी उनके गांव में पहुंचा तो सुनील चिंता से भर गए। वजह थी उनकी गर्भवती पत्नी रेणु, 9वां महीना चल रहा था और किसी भी वक्त बच्चे का जन्म हो सकता था। किसी तरह वे लोग राहत शिविर तक पहुंचे। रेणु प्रसव पीड़ा से चिल्ला उठी, लोग उन्हें अस्पताल ले जाते, इसी दौरान रास्ते में बच्चा हो गया। इसके बाद पहले नाव फिर टेम्पू से वे जच्चा बच्चा दोनों को भागलपुर ले आए। इन दिनों रेणु अपने बच्चे के साथ सदर अस्पताल में भर्ती हैं। उनके पति सुनील ने BBC को बताया,
कैंप को सामने जो है कैंप बाल बच्चा हुआ है, उसके बाद ले गए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से वहाँ से रेफर कर दिया, उसके बाद यहाँ आए। बहुत परेशानी, लाव से टपना पड़ा, उसके बाद आने पड़ा यहाँ पर।
नाथनगर ब्लॉक के अमरी विशुनपुर गांव की कंचन देवी ने भी बच्चा जाना है। गंगा में आई बाढ़ ने जब उनके गांव को लपेटे में लिया तो उनके पति रामदेव मंडल रोने लगे। लगा कि अब जिंदगी कैसे बचेगी। कंचन गर्भवती थी, सो चिंता ज्यादा हो रही थी। आनन फानन में नाव की व्यवस्था कराई गई। कंचन का पूरा परिवार उसी नाव से नाथनगर तक पहुंचा। इन दिनों वे भागलपुर के एयरपोर्ट के राहत शिविर में रह रहे हैं। कंचन के ससुर आदि मंडल ने बताया कि उन्हें पोती हुई है।
बड़े लड़का का रामदेव मंडल है, उसका पत्नी कंचन देवी है। डिलीवरी यहाँ से गाड़ी पर एसडीओ साहब ने भेजा सदर हॉस्पिटल मायागंज, वहाँ 11:05 में हुआ। नाथनगर नाव पे आए हैं, वहाँ से टेम्पो पर आए हैं यहाँ।
शाहकुंड प्रखंड के मुंजत गांव की ज्ञानती देवी का भी नवा महीना चल रहा था। मुंजत बाढ़ की चपेट में है। शनिवार को पचरुखी स्थित राहत शिविर में आने के क्रम में नाव पर उन्हें बच्चा हो गया। लेकिन हर औरत इतनी खुशकिस्मत नहीं जो बाढ़ भी उनके लिए खुशी का पैगाम लेकर आए। दिलदारपुर की रीना देवी को 15 दिन पहले बेटा हुआ। बाढ़ से बचते बचाते किसी तरह टीला कोठी राहत शिविर में पहुंची। लगा कि यहाँ जिंदगी चल जाए, लेकिन 2 दिन पहले यहाँ उनके नवजात बेटे की मौत हो गई। रीना ने बीबीसी को बताया,
नाव से लाए थे सर, 15-16 दिन रहा बच्चा। अब हमको ये पता नहीं है कैसे मौत हो गया, सुतले रह।
बिहार सरकार बाढ़ पीड़ित इलाकों में बच्चों के जन्म पर सहायता दे रही है। बेटियों के जन्म पर 15,000 तो बेटों के जन्म की स्थिति में 10,000 की सहायता राशि तय की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने 24 घंटे चालू रहने वाले कुछ टेलीफोन नंबर जारी किए हैं और राहत शिविरों में सैनिटरी नैपकिन भी बांटने का निर्देश दिया गया है। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए भागलपुर में।
और इस रिपोर्ट के बाद अब कार्यक्रम में वक्त है खेल समाचार सुनने का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ रजत चांदना। क्रिकेट में भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ओर से जारी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ICC T20 गेंदबाजी की रैंकिंग में शीर्ष 5 में वापसी करने में सफल रहे हैं। अश्विन ने 3 स्थानों की छलांग लगाते हुए 4th स्थान हासिल किया। इनके अलावा रोहित शर्मा और लोकेश राहुल भी बल्लेबाजी रैंकिंग में सुधार करने में सफल रहे हैं। रोहित ने 5 स्थान की छलांग लगाई और 17वें पायदान पर पहुंच गए, जबकि लोकेश राहुल ने 87 स्थानों की लंबी छलांग लगाते हुए रैंकिंग में 31वां स्थान हासिल कर लिया। लोकेश राहुल को हाल ही में अमरीकी धरती पर वेस्टइंडीज के खिलाफ हुए अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में नाबाद शतक लगाने का फायदा मिला। लोकेश राहुल ने इस मैच में 110 रनों की नाबाद पारी खेली थी। भारतीय T20 टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का मानना है कि लोकेश राहुल आने वाले वक्त में एक बेहतरीन बल्लेबाज बन सकते हैं।
राहुल की अगर बैटिंग की बात करें तो ही हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। अभी जितना भी इंडिया के लिए उसने मैचेस खेला, जिम्बाब्वे में भी उसने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। अगेन अच्छी बात यह है कि वो उन ओपनर्स में है जो स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेलते हैं। आई फील गौतम वॉज अनदर वन हु वॉज वेरी गुड, यू नो, व्हेन इट केम टू द मिडिल ओवर्स वो स्पिनर को बहुत अच्छा रोटेट करते थे और बाउंड्रीज भी लगाते रहते थे, तो स्पिनर कभी भी अपने आप को सेटल इन नहीं फील कर पाता है, एंड आई फील दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ राहुल ऑल्सो।
उधर BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि वे हॉकी के इस्तेमाल के बिना DRS को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन BCCI 4 दिवसीय टेस्ट को लेकर इतना उत्सुक नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में संभावित बदलाव के बारे में पूछने पर ठाकुर ने कहा, अगर आपके सामने फुल प्रूफ प्रारूप नहीं है तो इससे कैसे क्रिकेट में खेल को मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। BCCI अध्यक्ष ने कहा कि वह मैच की अवधि को कम करने की जगह दर्शकों को स्टेडियम वापस लाने के मुद्दे पर सोच विचार कर रहे हैं। वही भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त लंदन ओलंपिक 2012 के कांस्य से रजत के बदले पदक को मानवीय कारणों से लेने के उत्सुक नहीं है। शुरुआत में 2रे स्थान पर रहे पहलवान के उनकी मौत के बाद डोप परीक्षण में पॉजिटिव पाए जाने का पता चला। योगेश्वर ने ट्विटर पर लिखा, बेसिक कुदिकोव शानदार पहलवान थे, उनकी मृत्यु के बाद डोप टेस्ट में विफल हो जाना खुद है, मैं खिलाड़ी के रूप में उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा, अगर हो सके तो ये पदक उन्हीं के पास रहने दिया जाए, उनके परिवार के लिए भी सम्मान पूर्ण होगा। 4 बार के विश्व चैंपियन और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता कुदुकोव की दक्षिण रूस में 2013 में कार दुर्घटना से मौत हो गई थी। योगेश्वर सुशील कुमार के साथ लंदन खेलों में रजत पदक जीतने वाले 2रे भारतीय पहलवान बन गए हैं।
और अब कार्यक्रम में इससे पहले कि आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त एक बार फिर से आ गया है।
बीबीसी समाचार। भारत दौरे पर आए अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने पाकिस्तान को चरमपंथियों को पनाह देने से बाज आने की सलाह दी। इस पर पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि पाकिस्तान चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन भारत उसे श्रेय नहीं देना चाहता। ब्राजील में जिल्मा रूसेफ को हटाए जाने के बाद मिशेल टेमर को नया राष्ट्रपति बनाया गया है। उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और कहा कि रूसेफ को हटाए जाने के बाद ब्राजील का नया दौर शुरू हो रहा है। अमरीका ने रूस के उस दावे को मानने से इनकार किया है जिसमें कहा गया है कि चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के प्रवक्ता अबू मोहम्मद अल अदनानी की मौत रूस के हवाई हमलों में हो गई है। अमरीका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको की यात्रा पर गए हैं। उन्होंने मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिके पेना नीटो के साथ मुलाकात में मेक्सिको की सीमा पर दीवार खड़ी करने की अपनी योजना का बचाव किया। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम। एक घंटे बाद विश्व भारती लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। फिलहाल मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।